ओम शांति।
हम सब प्यारे बाबा के क्या है, हाँ, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और हाँ, गुरु के गुरु पोतरे भी हैं, है ना। बाबा कहता है एक ही मैं तीन हूँ। और फिर बाबा क्या कहता है कि ऐसा बाप टीचर गुरु आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे बच्चे लायक बन जाए, स्वर्ग में राजधानी के लायक बन जाए। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मणों को लकी स्टार, आकाश में जितने सितारे दिखते हैं ना, ये किसकी निशानी है? 9 लाख तारे मशहूर हैं, तो ये बाबा के बच्चों की निशानी है। कई सितारे बहुत चमकदार होते हैं, कई कट्ठे कट्ठे होते हैं, कई डगमग डगमग भी करते रहते हैं, है ना। तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी तारे। इसलिए लकी किसको कहा जाता है? जिसको मेहनत कम लगे, मेहनत लगे ही ना और लॉटरी मिल जाए। लक की लॉटरी कहते हैं ना, दुनिया में जितने व्यक्ति उसको मेहनत से मिलता है कुछ, लेकिन लकी को क्या होता है? लॉटरी मिल जाती है, बस लॉटरी मिली और वो माला माल हो गया। तो आपको क्या लॉटरी मिली, आपको मालूम है क्या लॉटरी मिली है? पहले वक्त में जो सेवा करते थे वो क्या कहते थे, हमें सेवा का मौका दीजिए, हैं? सेवा करने का चांस दीजिए। तो आपको तो सेवा करने का मौका मिला हुआ है, लेकिन ये जो सेवा है, बाबा ने क्या बोला था, सेवा के खजाने से क्या मिलता है, हाँ? नहीं, दुआएं भी मिलती हैं, दुआएं तो खास सेवा करो तो मिलती है। किसी की खास सेवा करो, जरूरत के वक्त कोई बीमार हो उसका आप ध्यान रखो, उसको जाके जो चाहिए उसको देके आओ, सेवा से खुशी मिलती है। तो दो प्रकार का फल मिलता है, एक प्रत्यक्ष फल, एक भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल है खुशी, अब भविष्य फल है कि कमाई जमा होती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेवा किस तरह हम करते हैं। एक तो सेवाधारी होकर ईश्वरी सेवा तो करते ही हैं। सेवा एक प्रकार से बाबा से प्यार करने का भी तरीका है। आप ये अगर समझो, बाबा का योग का क्या मतलब है, बाबा से प्यार करना। आप बिना प्यार किए योग में बैठ जाओ तो क्या होगा? कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बुद्धि लगा रहा है, परम धाम पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सूक्ष्म वतन की कोशिश कर रहा है, फिर क्या होगा कि यहाँ से चले तो जिधर को प्यार होगा ना उधर को मन घूम जाएगा, हैं? चले तो ऊपर को, हैं? चले तो बृहस्पति ग्रह की तरफ, पहुंच गया शनि ग्रह में, होता ना रॉकेट थोड़ा सा उसका बदल जाए तो उधर का उधर चले जाता है। तो चले पर बाबा को याद करने, रास्ते में अपना घर याद आ गया, अपना गांव, तो रॉकेट उधर को मुड़ जाएगा, है ना। कभी आपने देखा होगा दिवाली पर जब वो आतिशबाजी चलाते हैं ना ऊपर को जाने की, किसी किसी में डिफेक्ट होता है तो ऊपर को जाने की बजाय आपके कपड़ों की तरफ आ जाएगी आग लगाने, या पीछे पीछे भागते हो। इसी प्रकार से मन भी ऐसे करता है, क्योंकि वो मेहनत का तरीका है। तो जिधर को घूमता है वो किधर को घूमता है, जिधर प्यार होता है उधर ही घूमता है। इस वास्ते अगर हम ये ना समझे हम सेवा कर रहे हैं, है ना, क्या सेवा कर रहे हैं ये भी ना देखे, कुछ भी कर रहे हैं, आप समझो हम बाबा से प्यार कर रहे हैं, सेवा देखे ही ना, तो क्या होगा आपको? एक तो सेवा में थकावट नहीं होगी, सेवा लगेगी नहीं, देह भान से भी छूट जाएंगे। जब कोई व्यक्ति प्यार से कोई काम करता है तो क्या होता है, उसको फील होता है कुछ। माता को बच्चे, छोटे बच्चे का प्यार से उसका ध्यान रखती है, सारी रात भी जागती है, तो उसको फील होता है कि मैं रात को जागी नहीं। और किसी को कहते तो रात भर योग करना है तो अभी उसकी टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, है रात भर करना है, क्योंकि देह भान आ जाएगा, मेहनत लगेगी। प्यार में किसी को रात भर जागना है तो मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए अगर आप ये कुछ भी काम करें, आप ये समझो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाबा से प्यार कर रहे हैं बस। ये तो प्यार का मौका है, बाबा तो निराकार है, उसको कैसे प्यार करोगे, उसकी सेवा कर रहे हैं, ये भी तो उसका प्यार ही है ना, प्यार में ही कर रहे हैं ना। इसलिए सबसे अच्छा फल उसका है, वो योग हो जाएगा आप। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं इससे आपका खुशी का प्रत्यक्ष खजाना और भविष्य की कमाई जमा हो जाएगी। ज्योतिषी लोग हमेशा कहते हैं हर कर्म का एक प्रत्यक्ष फल होता है, एक भविष्य फल होता है। तो प्रत्यक्ष भी मिल गया, खुशी रहेगी। तो आपका सेवा करते करते खुशी रहती है, रहती तो होगी, फुल रहती है, लक्की की तरह थोड़ी सी सेवा की खुशी बहुत हो गई, वो रहती है। कई गेंद होते हैं ना आजकल, ऐसे गेंद निकले हैं जरा सा ऐसे करोगे तो ऊपर जाएगा, है ना, तो वो क्यों, उसके वो ज्यादा उसमें ऊंचा जाने की होती है। तो इसी प्रकार से जरा सा ऐसे करे ऊपर चले जाए तो क्या है, खुशी बहुत। अच्छा, अगर बहुत जोर से भी करे दोबारा हाथ तक भी ना आए तो उसको क्या कहेंगे, उसमें हवा कम है, है ना। इस वास्ते वो क्यों होता है, अगर हम सेवा उतनी ही करते, दो आत्माएं एक जैसी सेवा कर रही हैं, मान लो दोनों आत्माएं रोटी पका रही हैं या दोनों आत्माएं खाना बांट रही हैं, एक को ज्यादा खुशी है एक को कम, क्यों, काम एक ही जैसा कर रहे हैं, बाबा तो दोनों को दे रहा है, सेवा भी एक ही है, सेवाधारी है, एक को ज्यादा एक को कम क्यों, हाँ। इसलिए अगर सेवा करते करते, वो भी तो योग है ना, जैसे बाबा कहता खाना बनाते समय योग में बनाओ, खाना खाते समय योग में खाओ, अगर आपके अंदर कुछ आ गया, कोई संकल्प आ गया, ये कोई सेवा है, हैं? सारा दिन मैं रोटी बनाता रहूं हाथ जल जाए मेरे, ये कोई सेवा, सेवा वो है जो दादी जान की क्लास करा रही है बैठ के, वो सेवा है, उसको तो अच्छा पद मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, आ गया ख्याल तो क्या होगा, हाँ, खुशी रहेगी, बीच में आ गया दूसरे का चिंतन किया, हाँ, यहाँ भी कुमार लोग, कुमारों का क्लास हुआ, 8,000-10,000 कुमार थे, तो बोले हम सारी उम्र रोटी बनाते रहेंगे, हाँ, तो मैंने कहा नहीं, किसी किसी दिन चावल भी बना लिया करो, और क्या बोले, है ना। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये क्यों ख्याल आता है, इसका मतलब कोई मजबूरी से कर रहा है, इसलिए उसको अपनी सेवा को पसंद नहीं कर रहा। अगर बाबा से प्यार कर रहे हैं तो चाहे आप भाषण कर रहे हैं, चाहे आप बर्तन मांज रहे हैं, प्यार तो प्यार ही है, हैं? माँ बच्चे से प्यार करती तो उसका क्या कुछ नहीं करती, आप देखो छोटे बच्चे का, सिर्फ उसको नहलाती धुलाती थोड़ी, उसके सब काम माँ को करने पड़ते हैं, प्यार में करती है कि नहीं करती है। बड़ा ब्रह्मा बाबा भी जब शुरू शुरू में यज्ञ चला था, बच्चों की उल्टी भी साफ करवाते थे, है? तो इतना प्यार था, मेरे बच्चे हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी प्यार का रिटर्न देना है, तो हर वक्त बाबा ध्यान में रहे। बाबा ने कौन कौन से खजाने बताए हैं, हमारे कौन कौन से खजाने हैं, हाँ, ज्ञान के खजाने से क्या मिलता है, हाँ, देखो ना, अब ठीक है, बाबा कहते हैं ज्ञान के रतन जो हैं, एक एक रतन इतना वैल्यूएबल है, ज्ञान आपके अंदर एक बारी चला जाए तो उसका विनाश नहीं होता, दुनिया की जितनी पढ़ाई है वो खत्म हो जाती है, अगले जन्म में आपको फिर पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा, अगले जन्म में ये नहीं कहेंगे कि पिछले जन्म में एमए था इसको वैसे ही पास कर दो, फिर पहली से पढ़ना पड़ेगा, सब भूल जाता है। इस ज्ञान का, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है, जो आपने धारण कर लिया उसको वो आपके अंदर रहेगा, अगर कोई भाग भी जाए, आज की मुरली क्या थी कि भगवान को भी आश्चर्य लगता है, हैं? अपनी किस्मत को छोड़कर भाग भी जाए वो दुनिया में उसको चैन नहीं आएगा, फिर उसको लगेगा ये ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि ज्ञान अंदर बोलेगा उसको, है ना, आखिर उसको भाग भू के यही आना पड़ेगा। तो ये अविनाशी ज्ञान है, और इससे क्या मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। अब मुक्ति, जीवन मुक्ति हम किसको कहते हैं, एंड में मिलेगी हमें सारा ज्ञान, एक तो ज्ञान बुद्धि में आ गया, पहले तो बुद्धि में आना चाहिए, ठीक है ना, बुद्धि में आने से भी काम नहीं चलता, असली ज्ञान है जो आपके काम में आए, बुद्धि में आ गया, बड़ी बड़ी बातें हैं, तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है, कर्मों सब ज्ञान है, लेकिन जो अंदर यूज हो गया वो ज्ञान, किसी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है, बहुत धन होता है, लेकिन वो मान लो उसको शुगर की बीमारी है, उसको हार्ट की बीमारी है, उसको कैंसर की बीमारी, कुछ भी है, लंगड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका धन काम में आएगा नहीं। वो कहेगा मैं तो खाट पे पड़ा हूँ, धन बैंक में पड़ा है, मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, है ना। इसी प्रकार से धन ज्ञान का हो भी गया, असली जितना यूज, किसी का हाजमा खराब है, उसको घर से देसी घी का टीन आ जाए, अब वो खाएगा तो मरेगा, है ना। इसी प्रकार से किसी को शुगर की बीमारी है, एक तो दूसरा शुगर होता है, चीनी नहीं खाते, एक ज्ञान का आत्मा का भी शुगर हो जाती है। बाबा कहता मीठे मीठे बच्चे, उसको मीठा मीठा लगता ही नहीं, क्योंकि उसको तो शुगर है, वो कैसे मीठा मीठा, उसको फील ही नहीं होगा मीठा है, है ना, क्योंकि वो कहेगा नहीं नहीं, उसको फील नहीं होगा। जैसे किसी किसी को बहुत बुखार हो जाता है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है, उसके बाद उसको कोई भी चीज दोगे तो कड़वी लगती है। अब किसी ने माया का बुखार चढ़ा लिया, क्रोध का चढ़ा लिया, अहंकार का चढ़ा लिया, ईर्ष्या का चढ़ा लिया, द्वेष का चढ़ा लिया, दुश्मनी का चढ़ा लिया, नफरत का, फिर क्या होगा। बाबा कहेगा मीठे मीठे बच्चे, उसको लगेगा मीठे अंदर, नहीं लगेगा। और आजकल तो बाबा का जो हमारे लिए याद पर है, वो भी खुद ही बोल देते हैं मीठे मीठे बच्चों को, दे बाबा रहा और बच्चे बोलते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को तो नमस्ते ठीक है, लेकिन रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को भी खुद ही कर रहे हैं अपने आप को। जैसे शंकराचार्य खुद को तिलक लगाता रहता ना चंदन, खैर अच्छी बात है, तो तारा टोती ना, जैसे स्कूल में कहते हैं एक दूनी दूनी दो दूने चार, वो रट लगाते हैं, लेकिन मीठे मीठे का असर नहीं होगा, क्योंकि अंदर गड़बड़ है। इस वास्ते हमें ज्ञान रत्नों को हजम करने की, यूज करने की शक्ति चाहिए, वरना है अविनाशी अंदर, वो उस बोलेगा है मुझे यूज करो, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी आ जाएगी। अहंकार आ गया तो क्या समझेंगे, जितना ज्ञान है बहुत है, मुझे सब पता है, हैं? चूहा होता ना, हल्दी की गांठ मिल जाए तो समझता मैं पसारी हो गया, पंसारी की दुकान खोल लिया, तो जितना मिला वो तो बाबा वापस नहीं लेता। लेकिन भस्मासुर की भी कहानी है, तो थोड़ा सा लेकर उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वास्ते ज्ञान के धन खजाने के रत्नों से क्या मिलना चाहिए, किस चीज से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी चाहिए, कि हम गुलाम ना हो। एंड में तो मिलेगी, लेकिन रोज मिलनी चाहिए। अगर आपने अहंकार के गुलाम हो गए, सबसे अच्छी रोटी मुझे ही बनानी आती है, मेरी रोटी फूल जाती है, दूसरे की जल जाती है, सबसे मसालेदार खाना मैं ही बनाता हूँ, सबसे अच्छे जिज्ञासु को मैं ही समझाता हूँ, मेरा सब, मेरा काम से सब खुश है, ये भी एक बंधन है, ये मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें फंस जाएंगे, है ना। अपनी विशेषता का बंधन अपनी कमजोरी के बंधन से भी बड़ा है। अपना हाजमा क्या रखना, दुरुस्त रखना, ताकि बाबा जो ज्ञान के रतन देता है उसका हम धारण कर सके। उसके लिए बुद्धि कौन सी चाहिए, बाबा ने कहा मन कैसा बुद्धि कैसी, क्लीन एंड क्लियर, साफ स्वच्छ। अच्छा, फिर योग से क्या, योग के खजाने से क्या मिलता है। खैर, वो पहले जीवन मुक्ति का पूछ ले। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति तो मिलेगी दुनिया वालों को, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। जो भी कर्म हम करें, एक कर्म, या जो भी संकल्प हम करें, एक संकल्प, वो ये सोचना है कि क्या वो हमें जीवन मुक्ति देगा या बंधन में डालेगा। एक कर्म, जैसे टैक्सी करते हैं ना, स्कूटर करते हैं तो मीटर जीरो पे देखते हैं ना, जीरो पे है, बाद में फिर जीरो करवाते हैं, पेट्रोल लेते हैं तो भी जीरो देखते हैं। तो क्या हमारा संकल्प करने से पहले या कर्म करने से पहले जीरो मीटर था, और वो कर्म करने के बाद फिर जीरो है। आप कोई सेवा करने गए, वो सेवा करने के बाद आपका मीटर जीरो हुआ, या आप उसके थोड़े बहुत बंधन में फंस गए,
कि अच्छा बहुत अच्छी सेवा मैंने की है, या ये दिक्कत है रात के वक्त मुझे सेवा दे दी, कुछ भी संकल्प आ गया तो जीरो नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं कर्म हमारे क्या होने चाहिए, विकर्म नहीं बनने चाहिए, व्यर्थ नहीं होने चाहिए, विचार भी वैसे नहीं होने चाहिए। तो हर एक कर्म को हम देखेंगे ये मुक्त होकर किया, उसके बंधन में तो नहीं किया, या कमजोरी के वश किया या विशेषता के वश किया, दोनों में बंधन है ना। किसी को गीत गाना आता होगा तो यही सोचेगा मेरा गीत हो जाए, मेरा गीत हो जाए, मेरा गीत हो जाए। गीत तो अच्छा गाते हैं लेकिन सारे ज्ञान मुरली सुनने में ध्यान कम होगा, गीत हो जाए उसमें ज्यादा होगा। तो विशेषता क्या हो गई, बंधन हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए अगर गीत हो गया तो ठीक, ना हुआ तो और भी ज्यादा उदास हो जाएंगे, मेरा गीत नहीं हुआ, पेट में जैसे किसी को खाना हजम नहीं हो। इसलिए ये विशेषता को, विशेषता ज्यादा नुकसान करती है जब तक उसको निमित्त बन के ना करें कि बाबा ने नेकी कर दरिया में डाल, किया और छुट्टी है, वो आपका इसमें मुक्ति वाला कर्म होगा। इसलिए मुक्ति, जीवन मुक्ति, ज्ञान ये कहता है कोई भी कोई साथी मिल जाए, सेवा का साथी भी मिल जाए, उसी के साथ रहना भी पड़ जाए, अच्छा भी मिल जाता है और जिससे आपको पसंद नहीं वो भी मिल जाता है, ना नापसंद से आपको नफरत आए, ना पसंद से आपको खुशी हो, इसको कहते हैं न्यूट्रल। तो ज्ञान का भाव ये है सब कुछ करते हुए, ये भी नहीं कि अच्छा मुक्ति, जीवन मुक्ति का मतलब है काम ही नहीं करो, अलग बैठ जाओ, ना किसी के झंझट में पड़ो, ना नहीं, ये भी नहीं, करते हुए आपको तब जीवन मुक्ति मुक्ति मिलेगी। एक एक कर्म का जोड़ेंगे तो उसके टोटल करके आपको एंड में मिलेगी, वरना सोचे एंड में हमें अचानक एक दिन आएगा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी, वो नहीं होगा। हम कर्म, ज्ञान कर्मों के बंधन को काटता है, लेकिन कई काटते काटते पुराना काटते जाते नया बनाते जाते हैं, है ना। तो समझते मैं उधार चुकतू कर रहा हूँ और ऊपर का उधार ले रहे हैं, तो बंधन के बंधन में रहे। उसकी निशानी क्या है, अगर आप किसी भी चीज के दास हैं, गुलाम हैं, बाबा ने कहा जो दास है वो उदास है, उसको उदासी आएगी। इसलिए किसी भी चीज के हमको गुलाम नहीं बनना, मालिक बन के, इंद्रियों को भी मालिक बन के, बुद्धि के भी मालिक बन के, आंखों के भी मालिक बन के, अपने हुक्म से इनसे काम कराना है। तो हम अपने राजा बनेंगे तो विश्व के राजा बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर सारे ज्ञान को अपने लिए यूज करेंगे तो चंद्रवंशी में जाएंगे, जो सो कल्याणकारी है वो चंद्रवंशी है, और अगर उसको विश्व सेवा के लिए यूज करेंगे दूसरों के लिए तो सूर्यवंशी में जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सारा ज्ञान अपने लिए हजम नहीं करना, कोई कमाई करे सारी खा जाए, फैमिली उसकी भूखी मरे तो उसको क्या कहा जाएगा, इसलिए ऐसा भी नहीं। अच्छा अब आ जाओ जरा, आप योग के द्वारा कौन सा खजाना मिलता है, ठीक, सर्व शक्तियों का। ये सर्व शक्तियां किस काम आती हैं, हाँ? जितनी शक्तियां हैं वो दो तरह की हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के एक जैसी नहीं है। एक शक्ति कहेगी सहनशील बनो, ठीक है, दूसरी कहेगी सामना करो, ठीक है, एक शक्ति कहेगी हर्षित मुख रहो, दूसरी कहेगी अंतर्मुख रहो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये शक्तियां सर्व शक्तियां, दोनों का बैलेंस रखना और किस समय क्या करना है, ये है शक्तियों का कंट्रोल करना। जहां सामना करना है वहां आप सहन करने लग जाओ, जहां सहन करना है वहां सामना करने लग जाओ, दुनिया का सामना करना है दुनिया की सहन करने लग जाओ, यज्ञ वालों का सहन करना है वहां सामना करने लग जाओ। उल्टा हो जाएगा कि नहीं, बिजली का स्विच उल्टा लग जाए तो क्या होता है, शॉक भी लगता है और फ्यूज भी उड़ जाता है, तो बुद्धि का फ्यूज उड़ जाएगा, बुद्धि का डार्क हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ये क्या हुआ, इतना ज्ञान था वो कहाँ गया, तो गुम हो जाएगा। इसलिए सर्व शक्तियां एक तो सारी होनी चाहिए, फिर सारी का प्रॉपर यूज होना चाहिए, फिर वक्त पे वही शक्ति लाओ जो काम में आनी है। अब किचन में सफेद चारा की बहुत सारी चीजें होती है, मैदा भी होता है, सोडा भी होता है, सूजी भी होती है, चीनी भी होती है, नमक भी होता है, अब है तो सारा सफेद, अगर कहीं दूध में नमक डाल दिया डब्बे से तो क्या होगा। इसी प्रकार से जहां जो शक्ति यूज करनी उसकी जगह दूसरी यूज कर ली तो क्या होगा, चीज बिगड़ जाएगी। फिर कहेंगे यूज तो किया था, इतना सहन किया मैंने, इतना मुंह से कहना ही सहन करना मैंने क्या है, सहन किया उससे तो सफलता होनी चाहिए ना। या ये बोलते रहे आखिर हम कहां तक सहन करेंगे, ये भी क्या है, दुखी हो रहे हैं। तो शक्ति दुखी होने के लिए होती है, सुखी होने के लिए होती है। दूसरी बात कि सतयुग में शक्तियां नहीं होती, सतयुग में क्या होता है, गुण होते हैं। बिजली शक्ति है और ये लाइट जो जल रही है गुण है, समझा। अब किसी ने बहुत बड़ा बिजली का पावर वो ले लिया मीटर 200 किलोवाट का और घर में उसके एक ही पंखा है तो क्या करेगा, सिर्फ पंखा ही उसको सुख देगा, बाकी तो मीटर पड़ा है। आपने शक्तियां ले ली, उसको गुणों में नहीं बदला, उसको यूज नहीं किया तो वो मीटर पड़ा रहेगा ऐसे कैसे। इसलिए शक्तियों को भी उपयोग करना है तो प्रयोग करने के लिए कर्म में आना पड़ेगा। कहीं ये कहते मेरे में बहुत शक्ति है, जंगल में सन्यासी भी कहते हम बैठ गए हमने क्रोध को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। अच्छा, लेकिन क्या पता तुमने जीता है कि नहीं। जब पब्लिक में आओगे किसी के उसमें आओगे, ये जितने हैं ना परशुराम फलाना गुस्से में आ गए सारे, क्यों, ये जंगल में बैठ के अभ्यास किया तो समझा हमने जीत लिया है। जीत नहीं सकते। कोई कहे मैं बंदूक से शूट करना सीखता हूँ, मिट्टी का कबूतर ले आए घर में रख ले दीवार पर, रोज शूट करे, धीरे धीरे उसको आ जाएगा करना। लेकिन फौज में भर्ती कर दो तो दूसरी तरफ मिट्टी का कबूतर थोड़ी है, तुम्हारे शूट करने से पहले ही वो तुम्हें शूट कर देंगे। इसलिए बाबा कहता है प्रैक्टिकल में दूसरे के साथ व्यवहार करके तब आप पक्के होंगे कि नहीं, तब आपको शक्तियों का यूज आएगा। तो घबराना नहीं चाहिए कि मेरे सामने कि मेरा सेवा साथी कौन सा दे दिया है, सारी दुनिया से तो मुझे शांति मिलती है कि मेरी सारी शांति ले जाता, क्यों, ये मेरे कमरे में किसको रख दिया, ये रात को सोने ही नहीं देता, बाथरूम में घुसता तो निकलता ही नहीं है, जब मैंने जाना होता उसी वक्त जाता है, ये क्या है। वो ऊपर से बेचारा निमित्त है ना। असली बात क्या है, ये हमारा टेस्ट हो रहा है कि क्या हम, मान लो नल में ठंडा ही पानी आना शुरू हो गया, गर्म आ ही नहीं रहा, अब आप क्या करेंगे, टेस्ट है, ये देखना है। अरे विनाश के वक्त तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो ये मेरी शक्तियों का टेस्ट है कि क्या उस समय मेरी अवस्था कैसी रही। ड्रामा को समझा या ये समझा ये क्या है, ये क्या करते हैं नल वाले, बड़े लापरवाह हैं, ऐसे ऐसे संकल्प चलाए, इसलिए ये टेस्ट को पास करना है, उससे आपको कंट्रोल आएगा, तब आपकी शक्तियों का खजाना टेस्ट होगा, सर्व शक्तियां अंदर आएंगी। अगर आपको सहन करना पड़ जाए, आप समझो कि मेरा टेस्ट है और आप मैंने तो इसको पास कर लेना चाहे कुछ भी हो, तो आपको सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर आपने सोचा बहुत सहन करना पड़ रहा है बहुत, तो सहन शक्ति घट जाएगी क्योंकि वो यूज हो जाएगी। जैसे बैटरी होती है, इधर को तार जाए तो चार्ज होती है, इधर को जाए तो डिस्चार्ज होती है, वही शक्ति रॉन्ग संकल्प से कम हो जाती है और वही शक्ति ठीक तरह सोचने से बढ़ जाती है। फिर गुण, एक ऐसी शक्ति है जो सतयुग में भी होती है या संगम पर भी होती है, वो कौन सी है। और शक्तियां सतयुग में नहीं होती, सतयुग में किसको सहयोग दोगे, सब खुश हैं, किसके साथ स्नेह रखोगे सब खुश, किसके साथ सहन करोगे सब खुश है, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो दोनों जगह होती है, वो कौन है, कौन सी, निर्णय। सतयुग में तो निर्णय करना ही नहीं पड़ता, आपका सब काम ऑटोमेटिक निर्णय होता है, रूलिंग पावर। सतयुग में इस तरह का रूल होता ही नहीं, सतयुग में तो आपको नेचुरल प्यार से रूल होता है, वहां तो राजा रानी दिल पर राज करते हैं, पावर तो होती है। सामना किसका, शेर का सामना करेंगे सतयुग, वो भी नहीं होता है राजा को चाहिए, वो तो उसको होती है ना, प्योरिटी। तो प्योरिटी कहाँ पर, सतयुग में और यहाँ, दोनों जगह होती है। यहाँ फुल प्योरिटी हो जाए मनसा की वाचा की कर्मणा की, तो शरीर में नहीं रहेंगे आप, फटाफट चले जाएंगे। संगम पर तो उसको कंप्लीट करने की कर रहे हैं ना, ऐसी कौन सी है, एक है राज्य करने की। अच्छा, वहां कोई नाराजगी नहीं होता है। सहयोग वहां कौन मांगेगा, आप देंगे भी, वो कहेगा मेरे पास है। हा? वो है प्रेम, लव। कहते हैं गॉड इज लव, है ना। तो सतयुग में भी प्रेम होता है और कल संगम पर भी प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम से आप किसी को बदल सकते हैं। तो प्रेम की शक्ति दोनों गुण भी है, प्रेम गुण भी है और शक्ति भी है। बाकी सब शक्तियां वो वहां नहीं होती, वो गुण में बदल जाती हैं। जैसे कोई बीज होता है और उसका फल, तो फल उसका गुण है, तो वहां पर गुण स्वरूप हो जाते हैं। तो गुण हमें कितने चाहिए, गुण किससे बनते हैं, कौन से खजाने से, कौन सा खजाना जिससे गुण बनते हैं, धारणा का। धारणा से गुण बनते हैं ना। धारणा का मतलब क्या है, ज्ञान को धारण करो, शक्ति को धारण करो, तो आपके गुण के रूप में प्रकट होगा, ठीक है ना। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, आगे आगे आप कैसे दूसरों की सेवा करेंगे, अभी भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा था पास्ट को पास कर दो, प्रेजेंट में दूसरे को प्रेजेंट दो, कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, हैं? ये रुमाल जुराब का गिफ्ट नहीं, ज्ञान का गिफ्ट। और फ्यूचर में अपने फ्यूचर से दूसरे को उसका फ्यूचर दिख जाए, इनको कुछ प्राप्ति है। अगर चेहरे में उदासी होगी, चेहरे में वो क्या कहते हैं वो पड़ी होगी, तेरेवल पड़े होंगे, कभी उदास होगा कभी खुश होगा, तो देवताओं का चेहरा कभी बदलता है, एक जैसा रहता ना। बाबा जब आते हैं तो उनका चेहरा कभी बदलता है। बाबा को कहो तो मेक्सिको में वो फट गई ज्वालामुखी, तो बाबा उदास हो जाएगा। बाबा के सामने कुछ भी हो जाए, उसको रोज पता है सारी दुनिया में कितना दुख है, बढ़ रहा है, तो बाबा उदास हो जाता नहीं, क्यों है नहीं। बाबा को सबसे ज्यादा फील होता है दुनिया का दुख। हमको भी कहता है तुम्हें भक्तों की पुकार सुनते, लेकिन बाबा ड्रामा पे एक्यूरेट है कि ड्रामा अनुसार जिस वक्त सारा दुख दूर होना उसी वक्त होना है। पाप का घड़ा भर के ही फूटना है, अगर एक इंच भी कम भरा है फूटना नहीं है, इसलिए ठीक हो रहा है। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, ड्रामा में जो हुआ ठीक हुआ और आगे होगा उससे भी ठीक होगा, यही कहता है ना। क्योंकि हमारी चढ़ती कला है संगम युग पर। संगम युग क्या है, बड़ा मजेदार युग है। इसमें जब भगवान धरती पर आ गया, उसने बदलना शुरू कर दिया। आप चाहे बैठे भी रहोगे, भगवान दुनिया बदल रहा है, ठीक है ना। आप एक दिन सो जाओ, क्लास में नहीं जाओ, तो भगवान दुनिया नहीं बदल रहा, वो तो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, सतयुग में पत्थर मिट्टी सारे सतोगुणी हो जाएंगे, सारे पशु सतोगुणी हो जाएंगे, सारे फल मीठे हो जाएंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा, तो बदल रहा है ना। अच्छा, जो अज्ञानी है वो भी मुक्ति में चले जाएंगे। तो आप तो फिर भी ज्ञान लेते हो, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, 1%, 2%, 20%, 100%, तो आप नहीं बदलोगे, आप तो रोज ही बदल रहे हो। इस वास्ते जब मरीज डॉक्टर के हवाले हो गया तो डॉक्टर ने उसको ठीक कर ही देना है। तो मरीज उछल के कहे मुझे जल्दी ठीक कर दो, तो भी नहीं होना है, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते तो समय चढ़ती कला का, इसलिए आप हम लक्की हैं। तो समय का नहीं हमें ठीक कर देना, वो कहता है समय से पहले हो जाओगे तो आपको जीवन मुक्ति अच्छी मिल जाएगी। इसलिए ये जो है धारणा, तो धारणा से सारे गुण आ जाए, कोई गुण कम ज्यादा ना हो जाए। तो जितना कम होगा, एक गुण कम हो गया किसी सब्जी, बाबा ने बताई छठी, वो कौन सी है, हाँ उससे क्या मिलता है, उससे कौन सा खजाना जमा होता है, दुआओं का। देखो दुआएं हमें सिर्फ दो तरीके से मिल सकती हैं, एक तो माँ बाप की दुआएं होती हैं, बड़ों की दुआएं होती हैं, ठीक है ना। माँ बाप बच्चे को संबंध से दुआ देते हैं। कोई बच्चा माँ बाप का बन गया एक बारी, तो माँ बाप ने उसका इसके लिए शुभ भावना रखनी रखनी है। बच्चा नालायक भी हो, गलती भी कर दे, बच्चा लंगड़ा भी हो, तो भी बच्चा ठीक तरह पढ़े नहीं, तो भी माँ बाप तो उसको आशीर्वाद ही देंगे, अच्छा बच्चा जीते रहो, बड़ो फूलो। अच्छा, वो तो माँ बाप देते हैं, बिना कमाई के मेहनत के वो मिलती है रिश्तेदारी से कम बाबा के बच्चे बने रहेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, आज्ञाकारी, तो वो दुआएं मिलेंगी। बड़ों का कहना मानेंगे तो दुआएं मिलेंगी। जो बड़ों का कहना नहीं मानते, घर से भाग जाते हैं, उसका क्या होता है, किसी चाय की दुकान पे कप धो रहे होते हैं, देखा ना आपने, भाग जाते हैं। माँ बाप के साये में रहेंगे तो ठीक रहते हैं। अच्छा, लेकिन एक दुआएं कमाई से मिलती हैं। वो कौन सी है कि किसी को जो चाहिए वो देना, पुण्य करना, उससे दुआएं मिलती हैं। मान लो आपका कोई सेवा साथी बीमार है, आपके साथ वाले कमरे में रहता है, अब अगर आप उसका ध्यान रखोगे कि अच्छा भाई तुम्हें चाय ला देते हैं, डॉक्टर से ला देते हैं, तो आपको उसकी दुआ मिलेगी, देखो मेरे कहे बगैर इसने सेवा की। और अगर आप ये सोचो ज्ञान लगाओ अपने कर्म भोग रहा है और उसको भोगने दो, है अच्छा मैं अपनी क्लास को मिस करूं, है ना, तो दुआएं आपकी कट जाएंगी, दुआएं जो मिलनी थी वो नहीं मिलेंगी। इसलिए एक्स्ट्रा किसी को सुख देना, जो उसको चाहिए उसको अंदर मर्सी रखना, हम रहम दिल बनना, ये है दुआएं लेने का तरीका। और अगर अहंकार आ गया, रहम दिल का उल्टा क्या होता है, कहते हैं ना भक्ति में दया धर्म का क्या है, जड़ है, मूल है, और अभिमान क्या है, किस चीज का मूल है, अहंकार देह भान में लाता है। आप ये जाने मुझे क्या जरूरत है, मेरा कोई रिश्तेदार है ना, इसलिए छोड़ो। रिश्तेदार को कहेंगे ये तो लौकिक रिश्तेदार है, करनी सेवा है नहीं, कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट लगा लेना, इससे आपकी दुआएं करती है। ऐसे संबंध संपर्क में ठीक रहने से किसी को दुख नहीं देते, एक तो हम देते हैं तो सुख देते हैं, तो सुख देने से दुआएं मिल जाती, कम से कम उनकी बद्दुआ तो नहीं लेंगे अगर दुख नहीं देंगे, इसलिए संबंध स्वर संपर्क ठीक रखना चाहिए। ये बाबा का तो इससे आपको दुआएं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इस समय पर संगम पर और ये जो टाइम आ रहा है खतरनाक आगे आगे, उसके लिए हमें क्या प्रशारत करना खास, बाबा कहते ना कुछ समय नाजुक आ रहा है, उसके लिए आपको क्या खास प्रशारत करना है, फरिश्ता, वाह ठीक है, जब बम पड़ेंगे हम फरिश्ता बन जाएंगे, है ना, ठीक है, अच्छा बात है फरिश्ता बनना, क्योंकि आगे तो हम कहते थे ब्राह्मण सो देवता, आजकल क्या कहते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ठीक है ना, फरिश्ता सो आत्मा, आत्मा सो देवता, अच्छा। लेकिन प्रशारत क्या करना, चलो फरिश्ता बनने के लिए भी क्या प्रशारत करना है, क्या बोला, निराकार स्थिति का अनुभव करना, कैसे, तो बाबा ने बताया है हमारे पास दो स्विच हैं, वो है मेरे पास, मैं के पास, मैं जो है हूं तो मैं तो मैं ही हूं ना, अच्छा कि मैं नहीं हूं, नहीं मैं तो मैं हूं, अगर मैं एक स्विच दबाओ तो आप ऊपर चढ़ जाएगा आपका लिफ्ट, और अगर मैं का दूसरा स्विच दबाओ तो आपका लिफ्ट नीचे आ जाएगा, है दोनों मैं, वो क्या है, जो असली मैं हूं उसका स्विच दबाएंगे कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, तो आप ऊपर चढ़ेंगे, और अगर गलत स्विच दबाओगे मैं शरीर हूं देह भान में आओगे तो क्या होगा, नीचे आ जाओगे, वही उसी मशीन में। इसलिए बाबा कहता है अब हमको क्या बनना है, घर जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, देह का भान को, देह के अभिमान को खत्म करना पड़ेगा। देह का अभिमान किसमें होता है, देह में होता है, ये बताओ, देह का अभिमान किसमें होता है, आत्मा में होता है, ठीक है ना, इसलिए आत्मा को देह हमारा, हम सदा लेते रहे हैं, देह को, ये देह नहीं है सिर्फ, देह अभिमान के हमारे अंदर संस्कार है, वो कब से है, देह तो हम सतयुग से ही लेते रहे हैं, लेकिन द्वापर से उसका अभिमान यानी देह के अंदर फंस गए हम, क्योंकि देह से मोह हो गया, देह से छूटना मुश्किल है ना, जन्म लेते भी दुख, मरते समय भी दुख, सतयुग में तो ऐसा तो नहीं था, सिर्फ देह लेते थे, अब इतना पक्का हो गया अब कि देह को छोड़ना, मैंने हाल उतारना किसी का, इसको कहो शरीर छोड़ना है, कौन तैयार होगा, बहाना करेंगे कि हमें अभी और योग लगाना है, वैसे तो सोए रहे रोज, जब मरने का वक्त आएगा कहेंगे नहीं नहीं बाबा और थोड़े शरीर दे दे मैं योग लगाऊंगा, जैसे बच्चे नलायक होते हैं ना, पढ़ते नहीं, जब इम्तिहान का दिन आता है तो कहता है प्राइम मिनिस्टर मर जाए, एक दिन छुट्टी हो जाए मैं पढ़ लूंगा, ऐसे भी करते हैं, होता आता कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये देह का भान जो है ये छोड़ने के लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है आजकल बाबा मुरली के बीच में भी अव्यक्त बाप दादा हमको खास अभ्यास कराते हैं। देखा आपने कि भगवान किसी को योग लगवाए अपने साथ, उसको देह से न्यारा करे तो जरूर खास उसका महत्व होगा। और कहते इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने कह दिया ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ, आत्मा वहाँ की रहने वाली है, मैं वहाँ चले जाऊँ, मुंह से बोलते रहो तो क्या होगा, जाओ है नहीं तो क्या होगा। जैसे गंगाराम कहता है नल पर नहीं बैठना, गंगाराम बैठा नल पर है, बोल रहा है गंगाराम, उसको रटा दिया है नल पर नहीं बैठना, वही होगा। तो जब उड़ने लगेंगे तो बोलना शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, कुछ होगा ही नहीं। इसलिए उसकी स्मृति में अनुभव करना है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि देह से न्यारे होने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना। वो कैसे होगा, मान लो आप जाके अभी सोने के लिए बिस्तरे पर लेट गए, ठीक है, तो आपने ये सोच रहा है मैं देह से न्यारा, आपने आपको न्यारा कर लो देह से, ये देह मेरी पड़ी है और मैं इससे न्यारी आत्मा अलग हूँ, बुद्धि से तो कर सकते है ना, फिर देह में आ जाओ। ऐसे ही जैसे वजन घटाने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, हाथ ऊपर करते हैं, साइड में करते हैं, तो वो शरीर का वजन घटाते हैं। ये है टोटल शरीर से न्यारा होना। तो अपने आप को आत्मा समझ के देह से अलग हो जाओ, फिर देह में आ जाओ। अब मैं इस हाथ को चलाता हूँ, अब मैं लाइट को बंद करता हूँ, लेकिन पहले न्यारे। तो जितना दिन में ज्यादा से ज्यादा हम देह से न्यारा आत्मा बनकर फिर देह में आएंगे, गए बाहर आ गए, गए बाहर आ गए, उस अभ्यास से जब मौका आएगा तो आपको न्यारे होना आसान हो जाएगा, वरना फिर फंसे रहेंगे देह में। और ये योग में भी मदद करेगा। योग कहते हैं ना, बहुत सारे यही पूछते हैं आके कि योग हमारा अच्छा कैसे हो, बाबा से भी पूछते हैं, बाबा हम आपके पास आते हैं योग में, हमारा योग आपको पहुंचता है, ऐसे पूछते हैं बाबा से, है ना। इसलिए कि अपने पर ही शक है तो प्रेम से नहीं करते। तो न्यारा होकर ही बाबा ने कहा है परमात्मा अभिमानी बनने के लिए पहला स्टेप क्या है, आत्मा अभिमानी बनना, और बॉडी कॉन्शियस की और चीजें आने के लिए पहला स्टेप क्या है, देह अभिमानी बनना। इसलिए बॉडी कॉन्शियस से हटने के लिए और बॉडी के संबंधों से हटने के लिए और बॉडी के विकारों से हटने के लिए और बाबा की तरफ जाने के लिए देही अभिमानी शरीर से न्यारा होने का अभ्यास हमको करना है, क्योंकि इससे भय भी मुक्त होता है। अमर कौन है, शरीर या आत्मा? अमर कौन है, आत्मा। अच्छा, हम शरीर का बहुत ध्यान रखें, दवाइयां खाते रहें, शरीर का बहुत ध्यान रखें, ये करें वो करें, शरीर की लंबी आयु हो, संगम का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, वो सब ठीक है, लेकिन शरीर विनाशी तो है ही, आखिर तो शरीर छोड़ना है ना, परम धाम में शरीर थोड़ी ले जाएंगे। इसलिए फिर भय आएगा, अभी भूचाल आया, कोने में जाके खड़े हो जाएं शायद बच जाएंगे, और कोने में ऊपर आके छत गिर जाएगी, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है होना तो कर्मों से है, लेकिन भय से तो डर ही लगना है सिर्फ, है ना। सिर्फ मनुष्य आत्मा के अंदर ये बुद्धि है जो उसको डराती है। पशु के अंदर होता है दुख आया, आया, नहीं आया तो खत्म, उसको ना आगे का फिक्र रहता है ना पीछे का, उसको बुद्धि नहीं होती ऐसी। पीछे एक साल पहले भी मैं शेर मेरे पीछे लगा था, पशु को ख्याल नहीं आएगा, जब आएगा शेर तो आएगा, खा जाएगा तो खा जाएगा, उसको ये भी नहीं होगा कहीं शेर आ ना जाए, आएगा तो आएगा। मनुष्य को क्या होता है पीछे का भी, किसी ने एक साल पहले उसको चपेट मारा था उसको याद रहेगा, इसने मारा मैं इसको दो मारूंगा, एक साल याद रखेगा, अच्छा फिर एक साल और भी याद रखेगा, दोबारा आके मुझे चपेट ना मार जाए। इसलिए भविष्य का भी फिक्र और पास्ट का भी फिक्र मनुष्य को होता है। इसलिए बाबा कहता है कि इस फिक्र ये देह से होता है। अच्छा देह को चपत लगेगी ना, आत्मा को तो लगेगी नहीं। तो बाबा ने कहा आप ऐसी धारणा करो जो आपकी शरीर दूसरे को दिखे ही ना, देखते हुए भी चोर आए उसको दिखे ही ना आप कहाँ खड़े हैं आप। इसलिए बाबा कहता है कि ये न्यारे होने का जो अभ्यास है, जैसे जादूगर होते ना गायब हो गए प्रकट हो गए, ऐसा होता है ना, दिखता ही नहीं किसी को कहाँ चले गया, ये अभ्यास हमको निराकारी का करना है। ये करेंगे ना तो आपको सचमुच फील होगा मैं अमर आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, शरीर अलग पड़ा है। पहले आपने अलग कर दिया, जैसे आप अपनी शाल उतार के अलग कर देते हैं, सोफे पर रख देते हैं, तो आपको पता ना मैं शाल नहीं हूँ, शाल अलग है। ऐसे शरीर को भी आप खाट पे रख दो और अलग होके देखो उसको, बार बार ऐसे करेंगे तो आपको आत्मा की रियल फीलिंग आएगी और फिर निर्भयता आएगी, तो डरेंगे नहीं। नहीं तो जरा सा चूहा छोड़ दो किसी कमरे में तो क्या होगा, क्या होता है ना, उससे डर गया तो छोटा सा, वो आपसे डर रहा है, वो भाग रहा है आपसे डर के और आप उससे डर के भाग रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि न्यारे, अभी तो चूहा ही है, बड़े बड़े खतरनाक खौफनाक चीजें आएंगी, है ना। इसलिए मान लो माउंट आबू में दो तीन बम पड़ जाए हैं, तो सारे शेर भालू यहाँ आ जाएंगे, आपके कमरे में घुसेंगे, फिर क्या करोगे फिर। इसलिए आपको निर्भय होना है, समझा। क्या मालूम कितने सांप धरती से निकले हमें विनाश के वक्त, तो निर्भय होना पड़ेगा ना। इसलिए जो अच्छी आत्मा होगी उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसी को नहीं आएगी जिसने अपने आप को न्यारा किया हुआ होगा। ना मोह आएगा, ना लोभ आएगा, ना रिश्तेदार याद आएगा, बाबा याद आएगा। बाबा को याद करने के लिए भी ये बहुत मदद करता। ओम शांति।